ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय पांच श्लोक संख्या आठ शीर्षक है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। पुंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम् तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अतो ग्रह क्षेत्र सुतात्मवित्तये जनस्य मोहोयम् अहम् ममेति। पुंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम् तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अतो ग्रह क्षेत्र सुतात्मवित्तये जनस्य मोहोयम् अहम् ममेति। पुंस स्त्रिया मिथुनि भावमेतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अतो ग्रह क्षेत्र सुतात्मवित्तये जनस्य मोहोयम् अहम् ममेति। माता जी शब्दार्थ पुंसः पुरुष यानी नर का स्त्रियः स्त्री का मुथुनी भावम दाम्पत्य जीवन के लिए आकर्षण एतम यह तयोः उन दोनों का मिथः परस्पर हृदय ग्रंथिम हृदयों की गांठ आहु कहते हैं अतः तत्पश्चात गृह घर क्षेत्र खेत सुत पुत्र आप्त संबंधी स्वजन वित्तह तथा धन से जनस्य जीवात्मा का, मोह मोह, अयम यह, अहम मैं, मम मेरा, इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण संसार का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, धन, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। तात्पर्य: स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथिल संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलग क्यों न हो ले, प्रत्येक दशा में स्त्री, प्रत्येक दशा माने वर्णाश्रम धर्म में रहो तो भी और तलाक दे दो तो भी, प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के बारे में और पुरुष स्त्री के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन और संतान के प्रति आसक्त हो जाता है। भले ही ये सब क्षणिक ही क्यों ना हो, कभी कभी संन्यास लेने के बाद कोई कोई किसी मंदिर में या अपने वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं, किंतु ऐसी आसक्ति गृहस्थी के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है कि ब्रह्माद्या याज्ञवल्काद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायिनः बोध्यन्ते केचनेतेषां विशेषं च विदो विदुः। कभी कभी यह देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं होते हैं, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती हैं। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं, फलतः ये कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते उपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम। पुंसः माने पुरुष और स्त्रिया माने स्त्री, तो इन दोनों के बीच में मिथुनी भाव, मैथुन का भाव, स्त्री संसर्ग, काम वासना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, इसके कारण वे दोनों आपस में आसक्त होते हैं। तयो मिथो, दोनों मिथो माने परस्पर, ये दोनों आपस में आसक्त होते हैं। कारण क्या बताया? मिथुनी भाव। आसक्ति होने का मेन कारण क्या है? मिथुनी भाव। तो आसक्त होते हैं, तो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके हृदय आपस में बंध जाते हैं। हृदय में एक गांठ बन जाती है, जिसको यहां पे कहा गया है ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि। हृदय ग्रंथि आहु माने कहते हैं। इस आसक्ति को हृदय ग्रंथि कहते हैं, हृदय की गांठ। जब हृदय की गांठ बंध जाती है, तब उसकी आसक्ति ग्रह, घर में, क्षेत्र, खेत में, सुत, पुत्र में, आप्त, संबंधियों में और वित्तय, धन में आसक्ति हो जाती है। जब इन सब में आसक्ति हो जाती है, देखो शुरुआत कहां से हो? मिथुनी भाव। मिथुनी भाव से हृदय ग्रंथि, और हृदय ग्रंथि से इन समाम ग्रह और पुत्र पत्नी इन सब में आसक्ति। जब ये सब हो जाता है, तो जनस्य मोहोयम, उस व्यक्ति का मोह अहम ममेति तक पहुंच जाता है। अहम ममेति माने अहम माने मैं यह देह हूं, मैं यह आत्मा नहीं हूं। और ममेति मम इति, और इस देह से संबंधित जो भी हैं वे मेरे हैं, मम माने मेरे। इस प्रकार की धारणा उसकी हो जाती है, तो एकदम बंधन में हो जाता है। शुरुआत कहां से हुई? पहला हुआ मिथुनी भाव, फिर हुआ हृदय ग्रंथि, और फिर ग्रह क्षेत्र सुत आत्म में आसक्ति, और फिर अहम ममेति। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है, वो मेनली विषय भोग के कारण है, और कोई कारण मेन नहीं है। और जब मनुष्य विवाहित हो जाता है, तो यह आकर्षण और दृढ़ हो जाता है और बढ़ जाता है। स्त्री और पुरुष का यह जो ग्रंथिल संबंध है, ग्रंथिल माने जो हृदय में गांठ बन जाती है, इसके कारण मोह उत्पन्न होता है। और तब मनुष्य सोचने लगता है कि यह मेरी पत्नी है या यह मेरा पति है, यह वह सोचने लगता है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है, हृदय की गांठ। तो इस ग्रंथि को खोल पाना बहुत कठिन है, पॉसिबल नहीं है कोई भी कारण से। भले ही स्त्री और पुरुष वर्णाश्रम में धर्म में रहे, माने जैसे गृहस्थ आश्रम, अब यदि गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो भी इस ग्रंथि को वे तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि तब तो एक ओपन लाइसेंस हो जाता है गृहस्थ आश्रम में तो विषय भोग का, तो यह ग्रंथि टूटती नहीं है। और तलाक भी ले लिया तो भी यह ग्रंथि टूटती नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री नित्य निरंतर सोचते रहते हैं, पुरुष स्त्री के बारे में और स्त्री पुरुष के बारे में। यानी तलाक भी ले लिया तो या तो वह अपनी पत्नी के बारे में, पूर्व पत्नी के बारे में सोचेगा, और या वह अपनी नई पत्नी जिसको बनाना है उसके बारे में सोचता रहेगा। और इसी प्रकार स्त्री सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन और संतान के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि जब स्त्री के प्रति पुरुष आसक्त हो गया, तो उसके पुत्र होंगे तो पुत्र के प्रति आसक्त हो गया, पुत्र होंगे तो धन होगा, धन चाहिए उसको, घर चाहिए, तो इन सब के प्रति वह आसक्त हो जाता है। भले ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब क्षणिक है, टेम्पररी है, ये जितने संबंध है हमारे, धन संतान और परिवार, ये सब क्षणिक है, ये कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें आसक्ति हो जाती है। अधिकांशतः व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में इस ग्रंथि से बंधे रहते हैं, इस अटैचमेंट से वे लोग टाइड अप बंधे रहते हैं और इसलिए वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। कृष्ण के भक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है, ये ममता, इसको वे भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार का श्लोक संख्या 2 में ऋषभ देव जी कहते हैं कि तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तमो द्वार माने नरक का द्वार है। क्या बोले? योषिताम, योषिता माने स्त्रियां, स्त्रियों का संग, का संग करने वाला, यानी स्त्रियों का जो संग करने वाला है वह तो निश्चित तमो द्वार में जाएगा, नरक में जाएगा ही, लेकिन जो स्त्रियों के संग का संग करने वाला है, जो व्यक्ति स्त्रियों का संग करता है उसका आप संग करते हैं तो भी नरक के द्वार जाते हैं। लेकिन महत सेवा, यदि साधुओं की भक्ति की जाए, साधुओं की सेवा की जाए तो मुक्ति का द्वार खुला हो जाता है। बोले साधु कौन है? बोले ग्रहेशु जायात्म जराति मत्सु, श्लोक संख्या 3 इसी अध्याय का। न प्रीति युक्ता माने जिसके घर में, जाया माने पत्नी में, आत्मज पुत्र में, और अरति राति, राति माने धन में जिसकी आसक्ति नहीं होती है वह साधु। न प्रीति युक्ता, उसकी आसक्ति नहीं होती है वह साधु। तो इसके बारे में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ये 4 चीजों के बारे में, मिथुनी भाव, आसक्ति, हृदय ग्रंथि और फिर अहम ममेति। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि को ग्रहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेंद्रिय, स्नेह पाशे दृढ़ मुक्तम दृढ़ बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। बोले ऐसा कौन घर गृहस्थी वाला होगा जिसकी परिवार में दृढ़ आसक्ति है, और उसके लिए एक विशेषण दे रहे हैं इस परिवार वाले के लिए कि अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तो उसने घर गृहस्थी बनाई, इंद्रियां कंट्रोल में होती तो वह नहीं बनाता, इसलिए अजितेंद्रिय। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है और जो परिवार में आसक्त है, वह व्यक्ति विमोचितुम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, कैसे वह छोड़ सकता है? क्यों? क्योंकि स्नेह पाशे दृढ़म, उसके जो स्नेह का पाश है, ममता का जो पाश है, वो इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है कि वह मुक्त हो ही नहीं सकता। परिवार में आसक्ति इतनी दृढ़ है कि वह मुक्त हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी श्लोक के कहते हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए। बोले हमारा वास्तविक कर्तव्य होना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएं। जन्म, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, जरा बुढ़ापा बारंबार आना, और व्याधि माने रोग, बारंबार रोग आना, इनसे मुक्त होना हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले भवबंधन से मुक्त होना पड़ेगा, और भवबंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इस गृहस्थ जीवन से मुक्त होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी मेन क्वालिफिकेशन बताते हैं कि यदि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ेगा। बोले गृहस्थ जीवन वास्तव में इस भौतिकता से आसक्त व्यक्ति के लिए एक इंद्रिय तृप्ति का लाइसेंस है। मनुष्य गृहस्थाश्रम में इसीलिए आता है कि वह इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाए, अन्यथा उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप इन सब को छोड़ करके, राज्य को, घर गृहस्थी को छोड़ करके आप वन में चले जाओ। जाकर के भगवान का भजन करो, और नहीं तो हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम, ये जो आप गिरे हुए हो अंधे कुएं में, ये घर गृहस्थी कैसी है? बोली अंधा कुआ है, इसमें जब आप गिरे हुए हो इससे निकल नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वे प्रभुपाद जी इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जने त्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। यह है 1-2-7 कि वासुदेव भगवान कृष्ण में भक्ति, यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो तुरंत ही आशु, तुरंत ही आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यह भक्ति का फल होता है, और जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तब आप भगवत धाम जा सकोगे। ये क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने के लिए। ऐसे ही हम फंसे रहेंगे घर गृहस्थी में तो भगवत धाम का कई कई जन्म लेने पड़ेंगे, पर यदि आप सोचते हैं कि हम इसी जन्म में जाएं भगवान के धाम, तो ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। तो वैराग्य से भगवान की भक्ति की जाती है। बोले बिना ज्ञान के इस भौतिक विरक्ति से आदमी छूट नहीं सकता है। इस आदमी को जब प्राप्त कर लेता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तब वह भगवत धाम जाने का पात्र होता है। बिना वैराग्य के भगवत धाम वह नहीं जा सकता। बोले कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। अरे कैसे वह गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? जो अनुकंपिताया, उसके पत्नी बड़ी आसक्त है, बड़ी कृपा का है, उसकी उसकी सेवा करती है, संगम उसको संग देती है, रहस्यम एकांत में सुख देती है, तो कैसे वह व्यक्ति घर गृहस्थी को त्याग सकता है? बोले ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है, स्नेहिल है, जिसका हृदय सदैव अपने स्त्री के कार्यों में ही पूरित रहता है, तो कैसे उस स्त्री का संग छोड़ सकता है? और विशेषतया जब पत्नी अत्यंत दयालु सहानुभूति रखती है उसके ऊपर, एकांत में उसको प्रसन्न करती है, तो कैसे वह उस पत्नी का त्याग कर सकता है? बोले गृहस्थी में प्रभुपादी तात्पर्य में कहते हैं कि पहला आकर्षण क्या है? बोले सुंदरी और मृदुभाषिणी पत्नी, अन्यथा गृहस्थी में कुछ भी नहीं रखा है। तो जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली है, बोले मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो मेन इंद्रियों से प्राप्त होता है, एक तो जीभ से, एक शिश्न से। बोले स्त्री मधुर बोलती है, पुरुष को बड़ा अच्छा लगता है, और फिर वह उसके लिए भोजन बनाती है, वो खिलाती है, तो जीभ इंद्रिय तृप्त होती है। और जब जीभ इंद्रिय तृप्त होती है तो सबसे जो प्रबल इंद्रिय हमारी, जो उसको शक्ति मिलती है, वह शिश्न। तो इस प्रकार से वो मैथुन में और लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे अपने घर गृहस्थी को छोड़ सकता है? जन्मैथुन आदि ग्रह में दी सुखम ही तुच्छम, लेकिन ऐसा सुख तुच्छ है, यह आपका कल्याण नहीं करेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्रहम अंधकूपम, घर गृहस्थी के अंधे कुएं में आप लोग चले जाएंगे। माता देवहूति इसी प्रकार की प्रार्थना अपने पुत्र कपिलदेव से कर रही है कि देखो मैं इतने बड़े संत कर्दम मुनि जी के संग में रही, लेकिन फिर भी देखो मैं भौतिक आसक्ति में फंस गए। मैं उनसे मांगी कि आप मेरे साथ संग करिए और मुझको पुत्रों की प्राप्ति करवाइए, और जब पुत्र की प्राप्ति हो गई, आपके संग हो गया, तो निश्चित रूप से घर चाहिए, तो अच्छा घर प्रदान करिए, और उनके पालन पोषण के लिए फिर धन भी चाहिए, तो धन प्रदान करिए। इसलिए कर्दम मुनि जी ने एक योग माया से अपना एक बहुत बड़ा विशाल जहाज खड़ा कर दिया था। तो बोले मैं इतने बड़े संत के संग में रहकर भी और भक्ति में नहीं आई, मैं भौतिकता में आसक्त हुई, अहम ममेति में रही, इसी को यहां पे 3:25:10 में है ये कि अथमे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तुम अर्हसी यो वग्रहो अहम ममेति इति एतस्मिन् योजितस्त्वया। बोले हे प्रभु तुम अर्हसी आप योग्य हैं किसके लिए। बोले अपाकृष्टुम सम्मोहम मेरा जो ये मोह हो गया है इसको मिटाने के लिए आप योग्य हैं। ये अवग्रह है। अवग्रह क्या है जो अहम ममेति जो इस श्लोक में है लास्ट लाइन में ये अवग्रह है पकड़ इसके कारण मैं अहम ममेति में फंस गई हूं और इस अहम ममेति में फंसने के कारण मैं बंधन में पड़ गई हूं। योजी सस्तया आप इसको छुड़ाने में समर्थ हैं तो आप कृपा करके मुझे छुड़ाइए। इसलिए हे देव आप मेरे सम्मोह को नष्ट कीजिए। सम्मोहम सम्मोहम का अर्थ है सम्यक मोहम बहुत गड़ा मोह बहुत घना मोह है यह और मोह का अर्थ होता है भ्रम। तो क्या भ्रम है बोले तुमको यदि कपिल देव पूछे माता को कि क्या भ्रम है तुमको बोले यो अवग्रहो अहम ममेति इति एतस्मिन् योजितः त्वया। ये अहम ममेति की व्याख्या हो रही है अस्मिन् माने इस देह में और देह के संबंधी पदार्थों में जो मेरा अहम ममेति है यही अवग्रह है दुराग्रह है यही मोह है इसको आप समाप्त कीजिए। इति इति दो बार इस श्लोक में देखो आया है कि अहम ममेति अहम मम इति ये एक बार आ गया और इति एतस्मिन् योजितः त्वया फिर इति आ गया तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। दो बार इति आने से बहुत बड़ा अज्ञान है मोह है इसलिए दो बार इति शब्द का प्रयोग किया गया है। बोले जो दो बार कहने का मतलब है कि किसी बात को जोर देकर के हम कहते हैं कि ये बात तुमको करना ही है इसको जैसे किसी अरे एक उदाहरण देखिए अरे उसने ऐसा कहा हाँ ऐसा कहा दो बार ऐसा आया मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जो बड़ी या तो दुखदायी है या सुखदायी है या कुछ भी है लेकिन उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ऐसा शब्द पे तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं संस्कृत में बिप्सा। तो जो दो बार बिप्सा करने का मतलब है कि बहुत बड़ा दुख है ये अहम ममेति का। इति इति का अर्थ है कि ऐसा अवग्रह है ऐसा दुराग्रह ऐसा अज्ञान ऐसी दूषित धारणा मन में बसी हुई है कि मैं यह देह हूं और देह से संबंधी मेरे हैं यह अवग्रह बसा हुआ है मेरे मन में। और यह हुआ कैसे एक्चुअली हुआ यह मिथुनी भाव से लेकिन यहां माता देवहूति कह रही हैं कि यह त्वया योजित है इस श्लोक में यह कह रही है कि आपका दिया हुआ अज्ञान है त्वया योजित है। अब आजकल के लोग तो जब इसे सुनेंगे तो बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा चीज है सब मत सब दोष मत्थे मट दिया भगवान के कि त्वया योजित है लेकिन यहां तात्पर्य यह है कि आपकी शक्ति ने आपकी बहिरंगा शक्ति ने माया ने जिसमें मैं फंसी हुई हूं यह सब किया है। तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद भी है इसलिए शक्ति के द्वारा यह कार्य शक्तिमान पर आरोपित किया जा रहा है कि आपने यह कराया है। तो जब आपकी शक्ति ने जीव को अज्ञान में डाल दिया है तो आप उस अज्ञान से निकाल भी सकते हैं इसलिए आप अपनी दूसरी शक्ति से माने परा प्रकृति दो प्रकृति अपरा और परा अपरा ने तो मोह में डाला है परा से आप निकाल दीजिए। तो भगवान की ये स्पिरिचुअल पोटेंशियल है परा शक्ति जो ठीक है बहिरंगा शक्ति के विरुद्ध है। तो बोले जिसने बांधा है वही खोलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका में कहते हैं कि जय बांधे से छोड़े जो बांधा है वही खोलेगा। तो हे नाथ आपने बांधा है जीव को आपने बांधा है और खोलने का तरीका भी आप ही जानते हैं। दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है खोलेगा क्या उसको कैसे खोलेगा वो उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो कैसे ये हमारा अज्ञान जाएगा? तो आपकी माया ने जीव को बांधा है, तो भगवान जैसे कहते हैं कि मम माया दुरत्या, ये मेरी जो माया है इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, दुरत्या, भगवान की जो माया दुरत्या। पर साथ में ये भी कहते हैं कि मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम तेषां तरन्तिते, पर जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया से पार हो जाता है। तो माता देवती कहती है कि आपने यह अज्ञान दिया है, और भगवान कहते भी हैं कि सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च, ये अपोहनम माने विस्मृति, ये भगवान दिए हैं, कृष्ण दिए हैं, इसको बोलते फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, इसलिए इस हमारे सम्मोह का आप नाश कीजिए, यही अवग्रह है। ग्रह का अर्थ होता पकड़ना, तो जब किसी व्यक्ति को बहुत कस करके पकड़ लेते हैं तो उसको ग्रह कहते हैं। और आ का अवग्रह, आ का अर्थ है कि सम्यक पकड़ना, और अव का अर्थ है बुरी तरह से पकड़ना। तो बुरी तरह से ये जो हमारा आत्मा है ये एक कुत्सित पदार्थ को माने देह को पकड़ के रखी है, जीव इसको मैं मान रहा है। जीव स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, लेकिन इस जड़ प्रकृति के द्वारा दिए हुए जड़ शरीर को वह मैं कह रहा है। तो इस जड़ शरीर से संबंधित वस्तुओं को और लोगों को वह मेरा कह रहा है, इसको अहम ममेति कहते हैं, यही अवग्रह है। वास्तव में यह किसी प्रवचन से नहीं जाएगा, किसी स्मरण से या किसी मंत्र से यह नहीं जाएगा, यह भगवान की कृपा से जाएगा। जब भगवान कृपा करेंगे तब यह अहम ममेति जाएगा। बोले फिर हम जब मंत्र जाप करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो इससे क्या होगा? बोले इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा अहम ममेति वे मिटा देंगे। पर मिटाने वाले केवल वे ही हैं, जैसे भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामो पुयान्ति ते। और उसके आगे वाला श्लोक कहते हैं 10:11 कि तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। माने मैं नाश करता हूं, ये जो अहम शब्द इसमें आया है तो भगवान बता रहे हैं कि दूसरा कोई नाश नहीं कर सकता इस अहम ममेति का, मैं नाश करता हूं। तो अज्ञान कहां होता है? बोले अज्ञान हृदय में होता है, और भगवान हृदय में बैठे ही रहते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है इसको नाश करने में, इस अहम ममेति को। बोले जैसे ज्ञान के दीपक से मैं तुरंत अंधकार को नष्ट कर देता हूं। यदि आप किसी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में जाएं, तो एक दीपक लेकर के जाएं तो उसका अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान ज्ञान दीपक से इस अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। पर किसका? जो सतत युक्ता नाम प्रीति पूर्वक भजताम, जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं उनका अज्ञान दूर करते हैं भगवान, हर एक का नहीं करते हैं। तो हमको अब ज्ञान दीजिए। अब उद्धव जी कहते हैं हमको ज्ञान दीजिए, अर्जुन कहते हैं हमको ज्ञान दीजिए, माता देवहूति कह रही है कि हमको ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? बोले भगवत अनुभव, हमें आपके भक्ति दीजिए, कृष्ण भावनामृत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां सब हम सब का अनुभव है कि शरीर में कितनी अहम बुद्धि धंसी हुई है, इसको अवग्रह कहते हैं, पकड़। बुरी तरह से हम लोग इसके द्वारा पकड़े हुए हैं कि मैं यह देह हूं, और केवल वाणी से कह देने से कि मैं इस देह से भिन्न हूं उसी से काम नहीं हो जाएगा। वास्तव में उस प्लेटफॉर्म पर हमको जाना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूं। कहना बहुत आसान है कि मैं देह नहीं हूं, देह से संबंधी मेरे नहीं है, बहुत ईजी है इसको कहना, लेकिन सारा व्यवहार तो देह पर ही आधारित सेंटर्ड है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं देह नहीं हूं? तो ये भगवान की प्रार्थना से ये जा सकता है अहम ममेति, बुरा अवग्रह। अब दूसरी चीज लेते हैं आसक्ति। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बार बार कहे हैं कि ये आसक्ति किससे हुई? मिथुनी भाव से हुई, और हृदय ग्रंथि हुई, ये सब भी आसक्ति है। मिथुनी भाव और हृदय ग्रंथि और परिवार में, पुत्र में, धन में आसक्ति, ये भी आसक्ति है सब। और फिर अंत में अहम ममेति, तो ये आसक्ति कैसे जाएगी। तो देवहूति माता जी ने जो प्रश्न किया कि मैं जो फंसी हुई हूं आप निकालो, तो कपिल भगवान कहते हैं कि तुम्हारी यह आसक्ति कैसे जाएगी मैं बताता हूं। तो 3:25-20 कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम, प्रसंगम कहते हैं आसक्ति को। बोले यह आसक्ति अजर पाश है, जर माने बुढ़ापा, अजर माने जिसको बुढ़ापा नहीं आता है, पाश माने बंधन। ये कैसा बंधन है हमारी आसक्ति कि इसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, ये हमेशा नित्य यौवन में रहती है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती है, ऐसा कवयो विदुः विद्वान लोग कहते हैं। पर यही आसक्ति यदि सैव साधुषु कृतो, साधुओं में हो जाए, जैसा कि इस चैप्टर के भी दूसरे श्लोक में यही बात कही गई है, दूसरे श्लोक में यही बात कही गई है कि सैव साधुषु कृतो, यदि वही आसक्ति साधुओं में हो जाए तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष का द्वार अपावृतम माने खुला हुआ द्वार वह है। तो मनुष्य की आसक्ति संसार में अजर पाश है, बोले सारे साधुओं का मूल है सत्संग। यदि भगवान के पास जाना हो तो भगवान से आसक्ति और साधुओं में आसक्ति, वासनाएं पकड़ कर कर जीव को इस पकड़ धरातल पर ला रही है, अन्यथा जीव भगवान के धाम में था, पर इस वासनाएं उसको यहां पे माया में पकड़ रही है। तो इस आसक्ति को हटा करके साधुओं में हमको करनी है। पहले भगवान इस तरह से बोल रहे हैं कि मां, विद्वान लोग कहते हैं कि कवयो, कविजन विद्वतगण कहते हैं कि मनुष्य की जो आसक्ति है संसार में वह अजर पाश, ऐसा बंधन है जीव का जो कभी कट नहीं सकता है, कभी नहीं जीर्ण होगा, ये नित्य नवीन टाइट रहता है ये, और बहुत ताजा बंधन ये रहता है, अजर पाश है जीव का। प्रसंगम, तो प्रसंगम का अर्थ है अटैचमेंट, आसक्ति। जीव की जो आसक्ति है वह अजर पाश है, जीव को इस संसार में बांध करके रखा है इस आसक्ति ने। लेकिन वही आसक्ति यदि साधुओं में की जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला हुआ द्वार यह आसक्ति हो जाती है। यही अजर पाश यदि साधुओं में की जाए तो यही अजर पाश मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है, ये कभी जीर्ण होने वाला नहीं है। अजर पाश, अजर माने जर का अर्थ है बुढ़ापा, जरा, जिसको जरा न आवे, कभी पुराना न पड़े। यहां कोई भी बंधन आप देखिए तो पुराना हो जाता है, जैसे कि आप लोहे से बांध दो तो लोहे में भी जंग लग जाता है, वह भी कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। रस्सी से बांध दो तो रस्सी को भी आग से जला सकते हो, कट जाएगी वह, कुल्हाड़ी से भी रस्सी कट जाएगी, तो सब बंधन अपने आप कट जाएंगे। पर यह आसक्ति कैसी है, यह नहीं कटती है, यह अजर पाश है। कितना भी काल का कुठार चलता रहे, काल बीतता रहे, लेकिन यह पाश कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, एक सूत्र भी इसका नहीं कटता है, पूरा तो छोड़ो, थोड़ा भी यह नहीं कटता है, इसको बोलते हैं अजर पाश। लेकिन यही रस्सी यदि संसार के से हटा करके और भगवान के भक्तों में जोड़ दी जाए तो उसी को मुक्ति का द्वार खुला हो जाता है। सैव साधुषु कृतो, सैव, सैव माने वही आसक्ति, बदलना कुछ नहीं है आपको, वही आसक्ति, वही प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है प्रकृष्ट आसक्ति, यदि साधुओं में की जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान एक बार कहे थे कि मुझ में मन लगाओ, मुझे मेरी भक्ति करो तो तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, पर अब अपने भक्तों का वे महिमा बता रहे हैं, सत्संग की महिमा बता रहे हैं। तो यदि भक्ति पाना हो, ज्ञान वैराग्य पाना हो, क्रोध काम क्रोध लोभ आदि से मुक्त होना हो, अहम ममेति से मुक्त होना हो, तो सारे साधनों का मूल है बोले सत्संग। भगवान ये सिखा रहे हैं कि साधुओं से प्रेम करना चाहिए, और साधुओं का लक्षण बाद में बताएंगे भगवान। बोले वही प्रसंग वही आसक्ति साधुषु कृतो, साधुओं में यदि की जाए तो मोक्ष का द्वार खुला हो जाता है। वही आसक्ति जो बंधन है, जो बंधन करता है दूसरी जगह करने पर, ये आत्मा के बंधन को हटा करके और उस आत्मा को वैकुंठ में ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आसक्ति किसी तरह से सड़ जाएगी और जीव दौड़ करके भगवान के धाम चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, जा ही नहीं सकता। ऐसा बंधन है, यह अजर पाश है। लेकिन यदि वही पाश केवल एक जगह से खोल करके और साधुओं में किया जाए तो वही पाश ले जाएगा भगवान के पास, भगवान के धाम में ले जाएगा। तो यदि भगवान के धाम जाना हो, भगवान में आसक्ति और भगवान के भक्तों में आसक्ति होनी चाहिए, साधुओं में आसक्ति, यह बहुत जरूरी है। ये भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, श्री मुख से बोल रहे हैं कपिल भगवान कि ये करोगे तो चली जाएगी आसक्ति। बोले उपदेश के क्रम में सबसे अधिक जोर दे हैं साधु संग के लिए। जैसा चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, तो सब शास्त्रों में श्रीमद् भागवत भी है, प्रधान है ये भागवतम, तो यहां पर शास्त्र बोल रहा है, भागवत बोल रहे हैं, ये श्री भगवान बोल रहे हैं कि माता देहोती का प्रश्न था कि मैं एकदम से भोगों में आसक्त हो गई हूं, अब मुझको अपने स्वरूप में स्थित करिए आप, तो उसी को ये कहते हैं कि भक्ति करोगी। कौन सी भक्ति? बोले आध्यात्मिकम योग, भक्ति योग करोगी तो ये तुम्हारी आसक्ति अहम ममेति सब चली जाएगी। और भक्ति का मूल है, बोले जिस पर भक्ति आधार है, बोले वह साधु जन, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो कृष्ण भक्ति के जन्म के मूल कारण है साधु, साधु संग, भगवान के भक्त, ये कारण है। तो श्री भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मां प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, यानी ये पाश किसका है? आत्मा का। ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं कि प्रकृष्ट आसक्ति प्रसंगम, प्रकृष्ट आसक्ति जो इस संसार में, इस संसार के वासनाओं को भोगने में जो लगी हुई है, यही सबसे बड़ा बंधन है। जीव को यहां रखने के लिए, इस प्राकृत जगत में रखने के लिए, यही सबसे, ये आसक्ति प्रसंगम ये सबसे बड़ा बंधन है। ये जरा इसको प्राप्त नहीं होगी, बुढ़ापा इसको प्राप्त नहीं होगा, ये अजर पाश है वास्तव में। तो ऐसे बाहर से देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी भी बंधन में फंसे हुए हैं यहां, परंतु संसार के भोगने की जो लालसा है, जीव को सुदृढ़ आसक्ति है, भाई इसको बांध करके यहां पे रखा हुआ है, इसीलिए इसको पाशम कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि पाश का अर्थ होता है बंधन। जैसे पशु को आप बांध के रखो तो वो बेचारा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, तो इसी प्रकार इस आत्मा को इस संसार में बांध करके रखा है इस विषय भोग की अभिलाषा ने, विषय भोग की आसक्ति ने, यही मिथुनी भाव। तो कभी कभी आसक्ति इतनी दृढ़ है कि ये जा नहीं सकती, ये आत्मा का अजर पाश है, ये कभी क्षीण होने वाला नहीं है। देखिए इस संसार में जितने लोग हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी उनके मन में यह आसक्ति बसी हुई है। परिवार छोड़ने का समय आ गया, मृत्युशैया पे है बुढ़ा, लेकिन अरे तुम लोग देखते रहना, मैं तो जा रहा हूं, पर जरा देखो उस बच्चे को देखते रहना, उससे प्रेम करना। अरे जहां जा रहा है उसकी चिंता नहीं है, और जहां छोड़ रहा है उस नरक की तुमको चिंता है कि उसके तुम देखते रहना। यही हमारी आसक्ति है, जा ही नहीं सकती है। यदि जीव की इच्छा परिवर्तित हो जाए भगवान की सेवा के रूप में, भगवान की भक्ति के रूप में, तो तत्काल वैकुंठ प्राप्त कर सकता है, बंधन टूट जाएगा उसका। उदाहरण के रूप में जैसे एक कोई लाइट चीज यानी जैसे फुटबॉल या गेंद एक जंजीर से बांध करके आप पानी में डुबोएंगे तो डूब जाएगी। ये जंजीर हमारा है अजर पाश, ये हमारा बंधन, यही चार चीजें हृदय ग्रंथि, मिथुनी भाव और परिवार में धन में पुत्र में आसक्ति और अहम ममेति, यही चार चीज, ये हमारा जंजीर है। इसके कारण ये इस आत्मा को इस संसार में डुबो के रखी है, लेकिन ये जंजीर यदि टूट जाएगी तो वह अपने स्वरूप में आ जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा जीव। गेंद का, गेंद की यदि आप जंजीर तोड़ दोगे तो अपने आप वो पानी के सतह पे गेंद आ जाएगी। तो जो ही वासनाएं कट जाती हैं जीव की तो प्रेमी जीव ब्रह्मभूत के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, लेकिन वासनाएं पकड़ करके जीव को इस प्राकृत धरातल पर और बिठा रही है। तो सैयम साधुषु मोक्ष द्वार अपावृतम, यही आसक्ति है, यदि ये साधुओं में की जाए तो ये मोक्ष का अनावरण द्वार खुला हो जाता है। आगे भगवान बताएंगे कि ये साधु में आसक्ति का मतलब क्या है। ये 25वें श्लोक में बताया है 3:25:25 कि सताम प्रसंगान मंभीर्य संविधो भवंती रितकर्ण रसायना कथा, कि साधुओं के संग में रह करके साधुओं के मुख से मेरी कथा का श्रवण करो। ये इसका अर्थ यह है साधुओं का संग का, साधुओं में आसक्ति का। ये नहीं है मतलब कि साधुओं के साथ दिन भर रहो, ये मतलब नहीं है। साधुओं में आसक्ति का मतलब है कि सताम प्रसंगान मेरी कथाएं सुनो। तो अल्टीमेटली सेंटर्ड किस पे हो गई भगवान की भक्ति, श्रवणम, मेरी कथा सुनो। तो ये प्रार्थना कर रही है देवती माता जी कि साधुओं के संग की प्रार्थना करनी चाहिए, कपिल भगवान कहते हैं। तो प्रार्थना किसको कहते हैं, प्रार्थना, प्रार्थना माने प्रार्थना, अर्थना का अर्थ होता है हैंकरिंग, तरसना चाहिए तुमको कृष्ण कथा सुनने के लिए, तरसना चाहिए, यह मतलब है प्रार्थना का। तुम प्रार्थना करो कि मैं भागवत श्रवण करूं साधुओं के संग से, साधुओं के, क्योंकि ये कथाएं साधुओं के पास से ही मिलती हैं, इसलिए कहा गया कि साधुओं का संग करो। तो अपने मुख से, श्रीमुख से ये भगवान इन चीजों का, आसक्ति को हटाने का और उपाय बता रहे हैं। इसका जो आगे का श्लोक है उसमें भी भगवान यही कह रहे हैं कि यदा मनो हृदय ग्रंथि रस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्रय होता है, किसी भी पूर्व कर्मों के, कर्म जन्म के कर्मों के कारण हमारी ये हृदय ग्रंथि तो शिथिल पड़ जाती है तो हमारी आसक्ति इस संसार में शिथिल पड़ जाएगी। मतलब मेन यह है कि ये जो मिथुनी भाव है इसको आप समाप्त कर दोगे तो परिवार में आसक्ति, स्त्री में आसक्ति समाप्त हो जाएगी। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि घर गृहस्थ में भले ही रहो आप, लेकिन यदि मिथुनी भाव त्याग दोगे तो पत्नी में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, पुत्र में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, घर में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, और फिर आपको भगवान का भजन और कथा श्रवण तो करना ही है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, याद दीजिए प्रभु जी।
हरे कृष्णा। बहुत सुंदर लिखा प्रभु, आपने बताया कि जीव भगवान के धाम में था और उस भगवान के धाम से जीव किस प्रकार से संसार में आया, क्योंकि भगवान के धाम में किसी प्रकार क्लेश नहीं है।
ये तो कई बार लिखा प्रभुपाद जी ने कि उसको संसार को भोगने की इच्छा हुई इसलिए वो आया इधर। संसार को भोगने का जो विषय वासना, ये हमारी जो कामना है, इसी के कारण वह पतित हुआ है।
लेकिन जीव, ये कहा गया है शास्त्र में कि जब तक जीव कामना से मुक्त नहीं होता तब तक तो भगवत धाम जाता ही नहीं है।
हाँ, तो इसी का तो उपाय बताया यहाँ, कामना से मुक्त होने का ही तो उपाय बताया है यहाँ।
वहां जाने के बाद कामना कैसी प्राप्त हुई हमें, क्योंकि वहां तो
अच्छा कामना कैसे प्राप्त हुई,
हाँ कैसे, क्या हो, कैसे कामना, क्या कारण था वहां पर कामना का।
हाँ बराबर आपका, तो वहां कैसे गिरा ये शब्द जो, हाँ इसका जरा प्रभु जी को दीजिए, इसका उत्तर बता देंगे। एक
एक और वैकुंठ है जो भौतिक जगत में आता है, चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, जहाँ महाविष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं, वो भी एक वैकुंठ है। तो जीव जो है महाविष्णु से आता है, कारण कारणोदकशायी महाविष्णु से।
वो तो महाविष्णु से तब आएगा ना जब वो बद्ध हो गया।
लेकिन भगवान के जो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से जीव नहीं आता है।
हाँ, जीव वैकुंठ से नहीं आता।
और वहाँ भोग वासना स्व वासना नहीं होता है।
कुछ हुआ सॉल्यूशन आपका?
रूपा जी ये भी
कहने का इनकार था कि जीव वैकुंठ से नहीं आता है।
यद गत्वा न निवर्तन्ते, जब जीव वैकुंठ से भी गिरने लगेगा तो वैकुंठ स्वर्ग में क्या
नहीं गिरता। बिल्कुल ठीक बोल रहा।
क्या अंतर रहेगा?
वैकुंठ से नहीं गिरता है जी।
इतना मेहनत करके वैकुंठ गए फिर स्वर्ग जैसा गिर जाएंगे तो फायदा क्या है?
ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है।
तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है।
नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है वहाँ से।
हाँ, तो जो वैकुंठ है, एक और वैकुंठ है जो इस भौतिक जगत में आता है, वहाँ से जीव आता है। चेतन चरितामृत में इसका उल्लेख है।
हम मनुष्य ने जो भी अच्छे कर्म बुरे कर्म किए हैं उसकी छाप अपने आत्मा में पड़ी रहती है या मन में पड़ी रहती है?
ये सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। हमारे जो कर्म है ये हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। और सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार से, तो ये मन उधर ही रहता है।
तो मन में रहता है।
हाँ, तो फिर मन उस आत्मा को, ये सूक्ष्म शरीर उस आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्थानांतरित करता है जिस देह में जाना होगा उसको।
तो आत्मा हमेशा पवित्र रहता है?
आत्मा हमेशा
पवित्र रहता है।
पवित्र? हाँ। नहीं, बंद गया ना। यदि खराब कर्म किया तो बंद गया वो आत्मा, तो पवित्र कहाँ हुआ? बंद गया वो, बद्ध आत्मा बोलते हैं उसको। और कोई?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा तो खाली एक सजेशन है कि हमारे शिक्षा पद्धति में हमारे शुरू से ये चीजें अगर थोड़ी लिखी जाए, पढ़ाई जाए, तो इससे काफी सुधार हो सकता है। अभी हमको अभिज्ञान होता है कि हमने ऐसा किया ऐसा किया बचपन में जवानी में, तो अगर हमको शिक्षा मिलती तो हम हो सकता है हम सुधर जाते।
प्रभु जी का कहने का मतलब यह है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए ये अध्यात्म का, जो हमको ये सिखाए कि भाई ऐसा तुम पतित हो जाओगे, ऐसा तुम गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो ये होगा वो होगा। इनका कहने का मतलब यह है, हम बुढ़ापे में आकर के भक्ति करते हैं तब हमको ये मालूम होता है, ये हमको पहले से मालूम होना चाहिए। अच्छा, उनका कहना
जी यही मेरा।
बहुत ठीक बात है, बहुत अच्छा सजेशन है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी नहीं है, इस्कॉन की गवर्नमेंट होती तो जरूर ऐसा ही होता, क्योंकि हमारे इस्कॉन के स्कूल में तो ये पढ़ाते ही हैं हम लोग, ये सिखाया जाता है। हाँ, प्रभु जी को दीजिए।
हरे कृष्णा। ये पुरुष और स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक है बद्ध जीव के लिए, करेक्ट? ऐसा है कि ये केवल गृहस्थ के हृदय में ग्रंथि है और ब्रह्मचारी का हृदय में ग्रंथि छूटने का सवाल पैदा नहीं होता क्या?
नहीं 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 नहीं, नहीं ये मत सोचो। उनके अंदर भी रहती है ग्रंथि, पर वो ग्रंथि कम होगी जब वो ब्याह करेगा, तब तक वो निष्कलुष है। लेकिन जो अंदर में उसकी भावनाएं हैं वो डिपेंड करता है किस प्रकार की है। यदि उसकी भावना ये है कि मैं तो शादी करूंगा तो वो ग्रंथि में फंसने वाला है। लेकिन यदि प्रभु जी जैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी हों, दो बैठे यहां नैष्टिक ब्रह्मचारी, तमाल जी असीम जी, इस प्रकार की यदि भावना होगी तो उसका फिर ये हृदय ग्रंथि नहीं होती है। तो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम खाली एक ट्रेनिंग पीरियड है ये सिखाने के लिए कि भाई तुम क्या चाहते हो। तो हम यदि अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें तो बिल्कुल सीधा संन्यास तक जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार लिखे हैं इस बात को।
हरे कृष्णा।
हाँ, प्रभु जी को दीजिए पीछे।
हरे कृष्ण। तो जी आप जो बोले जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान गीता में बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं वामावक्षी जीव अंश, जो आत्मा है मेरा अंश है, तो मेरे से आए हैं कहीं कारण से। और हम यहाँ जो बोल रहे हैं अलग कुछ वैकुंठ है, तो भौतिक के अंदर है, तो फिर हम कैसे समझेंगे आत्मा या भौतिक या आत्मा तो आध्यात्मिक है। तो भगवान डायरेक्ट बोलते हैं मेरा अंश है, तो वहीं से आना चाहिए, तो इसके क्या थोड़ा समझाइए मुझे
भाई। इसका उत्तर इन्हें से लीजिए, क्योंकि प्रभु जी जरा बता दीजिए इनको।
जगत जो है ये भी भगवान का ही एक ये है, सृजन है, ये भी एक तरह से
देखा। उनका प्रश्न ये है कि ममे वांशो, जीव मेरा अंश है, तो जब जीव मेरा अंश है तो उस समय तो वह बद्ध नहीं है।
लेकिन ये विभिन्नांश है ना, जीव विभिन्नांश है, डायरेक्ट भगवान से नहीं आता है, समझ गए। जैसे गाय से गोबर भी आता है, दूध भी आता है, मूत्र भी आता है, चर्म भी आता है, सिंह भी आता है, वो लेकिन गाय नहीं माना जाएगा। वो गाय का गोबर दूध के बराबर तुल्य होगा। भगवान से बहुत चीज सृजन होता है, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सब भगवान सृजन करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न होता है। जैसे गाय का कोई बोलेगा गोबर गाय का अंश है, गाय है गाय हो सकता है गोबर नहीं, गाय का ही अंश है गोबर, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकृति है। उसी तरह जीव भले भगवान का अंश है, लेकिन भिन्न प्रकृति है इसका।
इनका प्रश्न यह है कि वो बंधन में कैसे पड़ गया।
ये अनादि काल से लिखा गया है ना कि जीव अनादि बहिर्मुख है,
पर कहीं न कहीं तो शुरुआत हुई होगी।
हाँ शुरुआत है, लेकिन उसकी गणना इतनी लंबी है
उसका पता नहीं।
हाँ उसको इसीलिए अनादि शब्द कहा गया है।
समझ गया आप।
इतने जन्मों से करोड़ों अरबों जन्मों से जीव बद्ध है,
बद्ध है
ये भी लिखा गया है, तो इसीलिए अनादि कह दिया जाता
है। इसलिए अनादि काल, बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु जी को दीजिए।
हरे कृष्ण। तो जी आप बोले जो कृष्णा ही जीव को बंधन से छुड़ा सकता है, तो इसमें यह है कि भगवान का जो नाम रूप गुण लीला ये क्या भगवान वो अगर जीव ग्रहण करता है वो छुड़ा नहीं सकता है जीव को बंधन से।
यही बात तो इस श्लोक में आई थी, देवती माता जी के श्लोक में वो कहते हैं कि नहीं, कपिल भगवान के श्लोक में प्रसंगम अजरम आशम, कि ये जो आसक्ति है ये नाम जप करने से आसक्ति नहीं जाएगी, नाम जप करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तब भगवान ये आसक्ति को हटाएंगे, हटा केवल भगवान सकते हैं।
लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि जो भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं हैं वो नाम भगवान से अभिन्न है।
इसीलिए तो उनको प्रसन्न करने के लिए तो है ना, ये तो भगवान ही तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है ये सब।
तो यहाँ माना जाए कि भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान से अलग है।
नहीं, एक ही चीज हो गया ना,
तो फिर नाम भी तो उद्धार कर सकता है ना फिर। भगवान और भगवान के नाम में भी अंतर नहीं है, तो नाम जो है सक्षम है तो भगवान का नाम
उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा था वो ये है कि उनका करने से भगवान प्रसन्न होते हैं नामोच्चारण से। आपका कहना भी ठीक है कि नाम भी भगवान ही है, तो लेकिन वो यहाँ ये कहा गया है कि भगवान प्रसन्न होते हैं नामोच्चारण से, तब भगवान उसकी आसक्ति मिटाते हैं। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की।